आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, अयोध्या के साथ साथ सभी नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में किया जाए विकसित। गंगा एक्सप्रेसवे का 82% से अधिक काम हुआ पूरा। महाकुंभ 2025 से पहले तैयार हो जाएगा ये एक्सप्रेसवे। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल को करेंगे लॉन्च। और बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर उफान पर। बाढ़ के कारण अब तक प्रभावित हो चुके हैं 22 जिलों के 1476 गांव। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश में बिजली उत्पादन और वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या के साथ साथ सभी नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों में उत्साह है। अब तक 18 लाख से अधिक लोगों ने योजना से जुड़ने के लिए पंजीयन कराया है। योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करें। झांसी ललितपुर कानपुर नगर कानपुर देहात चित्रकूट और जालौन में प्रस्तावित सोलर पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से पूरी करें। इसी प्रकार जैव ऊर्जा नीति के अनुरूप सीबीजी बायोकोल और बायोडीजल प्लांट की स्थापना की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव हो या नगरीय क्षेत्र, ट्रांसफार्मर खराब हो तो बिना विलंब तत्काल सुधार होना चाहिए। बिजली कनेक्शन में अनावश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज को कम किया जाए। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी उपभोक्ता को गलत बिजली बिल न मिले और सभी को समय से बिल मिल जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बिजली मीटर जांच और बिल बकाया के नाम पर किसी उपभोक्ता का उत्पीड़न न हो। हर उपभोक्ता के साथ हमारा व्यवहार सद्भावपूर्ण होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अतिरिक्त आज प्रदेश में अनपरा हरदुआगंज ओबरा परीक्षा और जवाहरपुर में 22 थर्मल परियोजनाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। घाटमपुर पनकी ओबरासी और जवाहरपुर में निर्माणाधीन इकाइयों का कार्य तेजी के साथ पूरा कराया जाए। साथ ही रिहंद बांध ओबरा जलाशय तथा इसके आसपास के क्षेत्र में पंप स्टोरेज प्लांट स्थापित किए जाने की संभावना का अध्ययन किया जाए। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य महाकुंभ 2025 से पहले दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले इस 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 जिलों और 518 गांवों से होकर गुजरेगा। इसका निर्माण 36,230 करोड़ रूपये की लागत से किया जा रहा है। इस एक्सप्रेस वे को शुरुआत में 6 लेन का बनाया जा रहा है और आगे चलकर इसे 8 लेन का किया जाएगा। इसका अब तक करीब 82% से अधिक काम पूरा हो चुका है। इस एक्सप्रेस वे पर शाहजहांपुर के जलालाबाद के पास एक हवाई पट्टी भी होगी। इस हवाई पट्टी की लंबाई 3.5 किलोमीटर रखी गई है। इसका मकसद आपात स्थिति में बड़े बोइंग विमान को उतारने की है। इस एक्सप्रेस वे पर 2 मुख्य जबकि अन्य स्थानों पर 15 रैंप टोल प्लाजा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नई स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। एजेंसी ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एनटीए की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। शीर्ष अदालत ने स्थानांतरण याचिका को नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की मांग वाली मुख्य याचिकाओं के साथ जोड़ने का आदेश दिया, जिस पर 18 जुलाई को सुनवाई होनी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई पर रोक के लिए कोई औपचारिक आदेश जारी करने से इनकार किया है। खंडपीठ ने कहा कि एक बार हमारे नोटिस जारी करने के बाद आमतौर पर उच्च न्यायालय आगे सुनवाई नहीं करते हैं। उधर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय परीक्षा सीयूईटी यूजी के प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए 19 जुलाई को दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। यह परीक्षा कम्प्यूटर आधारित होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल एआईआर न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मौके पर श्री मेघवाल संविधान और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल को लॉन्च करेंगे। यह कार्यक्रम भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने और भारत गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में 24 जनवरी से 23 अप्रैल 2024 तक माई गॉव प्लेटफॉर्म पर आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अभियान का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 24 जनवरी 2024 को दिल्ली में किया था। वन महोत्सव के तहत प्रदेश में 20 जुलाई को एक दिन में 36 करोड़ 46 लाख पौधे लगाने का महाअभियान चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि सरकार का प्रयास न केवल पेड़ लगाना है बल्कि पेड़ बचाना भी है।
20 जुलाई को वृक्षारोपण महापर्व, इस दिन हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक पे, हर गांव में बड़ी संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे और ये पेड़ हर एक के द्वारा लगाए जाएंगे। पेड़ लगाना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, एक पेड़ माँ के नाम। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। हमको पेड़ लगाना है और पेड़ बचाना है। और पेड़ लगाओ अभियान तो अभी हमने शुरू किया है, लगभग 4-5 महीने बाद पेड़ बचाओ अभियान चलेंगे। तो मैं कहूंगा हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ बचा रहे हैं और पेड़ माँ के नाम लगा।
प्रदेश के कई जिलों में कल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए गए। कौशाम्बी जिले में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 257 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। वाराणसी में आयोजित इस कार्यक्रम में 78 जोड़ों का विवाह कराया गया। उन्नाव जिले में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की उपस्थिति में 179 जोड़े विवाह सूत्र में बंध गए। महाराजगंज में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 96 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। मेरठ में 138 जोड़ों ने सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाया। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। शाहजहांपुर में रामगंगा, बलिया में घाघरा, गोरखपुर में राप्ती, सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती और कुन्हरा और गोंडा में क्वानो नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अयोध्या में घाघरा और महाराजगंज में रोहिन नदी खतरे के जलस्तर से महज आधा मीटर नीचे बह रही है। बाढ़ के कारण अब तक प्रदेश के 22 जनपदों के 1476 गांव प्रभावित हो चुके हैं। बस्ती जिले में घाघरा और कुआनो नदी के उफान से वहां के दर्जनों गांव का संपर्क जिले से कट गया है और हजारों एकड़ फसल बाढ़ के पानी में डूब गई है। प्रभावित जनपदों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की रेस्क्यू टीमें कार्यरत हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रदेश में अब तक 1829 बाढ़ शरणालय और 569 पशु शिविर बनाए गए हैं। बलिया जिले में कल राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत खुरपका मुंहपका नियंत्रण टीकाकरण अभियान के चौथे चरण की शुरुआत की गई। यह अभियान 30 अगस्त तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत 6 लाख से अधिक गोवंशीय और महिषवंशीय पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। कन्नौज जिले के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में कस्बा समधन में कल शाम एक तालाब में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए जिससे उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे गोताखोरों ने 2 घंटे अनवरत प्रयास के बाद चारों बच्चों के शव तालाब से निकालने में सफलता पाई। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, अयोध्या के साथ साथ सभी नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में किया जाए विकसित। गंगा एक्सप्रेसवे का 82% से अधिक काम हुआ पूरा। महाकुंभ 2025 से पहले तैयार हो जाएगा ये एक्सप्रेस वे। केन्द्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल को करेंगे लॉन्च। और बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर उफान पर, बाढ़ के कारण अब तक प्रभावित हो चुके हैं 22 जिलों के 1476 गांव। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।